एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज ज्ञान गोष्ठी में हम जिनकी बात कर रहे हैं वो 20वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली विचारक थे, बर्ट्रंड रसल। एक ऐसा नाम जिनका काम सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं रहा।
हाँ बिल्कुल, रसल का दायरा बहुत बड़ा था। दार्शनिक तो थे ही, गणितज्ञ, तर्कशास्त्री, फिर समाज सुधारक और शांतिवादी भी। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला पर साहित्य का।
हाँ, ये दिलचस्प बात है। वो एक तरफ तो बेहद तकनीकी अकादमिक दर्शन पर काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम लोगों के मुद्दों से भी जुड़े थे।
यही उनकी खासियत थी, एक पुल की तरह थे वो, गहन तर्क और मानवीय सरोकारों के बीच। चलिए आज उनके जीवन और विचारों की इस दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं।
उनका जीवन भी तो बहुत लंबा था, 1872 से 1970 तक। ये तो दुनिया के बड़े बदलावों का दौर था।
यकीनन, सोचिए विक्टोरियन युग का अंत देखा उन्होंने, फिर दो विश्व युद्ध देखे, फासीवाद और साम्यवाद का उदय, परमाणु युग की शुरुआत, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन, सब कुछ।
और बौद्धिक दुनिया में भी तो उथल पुथल मची हुई थी। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत आ रहा था, फ्रॉइड मनोविश्लेषण ला रहे थे।
बिल्कुल, और गणित और तर्क की जिन बुनियादों को एकदम ठोस माना जाता था, उन पर ही सवाल उठने लगे थे। जो पुरानी धार्मिक और नैतिक निश्चितताएं थीं, वो भी हिल रही थीं।
ऐसे माहौल में उनके विचारों को किन चीजों ने शक्ल दी, उन पर किसका प्रभाव था?
देखिए, दो मुख्य प्रभाव थे। एक तो जॉन स्टुअर्ट मिल का अनुभववाद, मिल उनके गॉडफादर भी थे, और दूसरा फ्रेगे जैसे जो गणितज्ञ थे, उनके तार्किक काम का।
अच्छा, अनुभववाद और तर्कशास्त्र का मेल।
हाँ एक तरह से, और उनके समकालीन भी बड़े दिग्गज थे। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड, जिनके साथ उन्होंने मिलकर काम किया, जीई मूर, और हाँ लुडविग विटगेंस्टीन, जो उनके छात्र थे लेकिन बाद में उनके बड़े आलोचक भी बने, एचजी वेल्स जैसे लेखक भी।
उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए। जन्म तो उनका एक कुलीन परिवार में हुआ था।
जी, वे तीसरे अर्ल रसल थे, ब्रिटिश अभिजात वर्ग। लेकिन बचपन में ही, शायद 4 या 6 साल की उम्र में, वो अनाथ हो गए थे।
ओ, तो उनका पालन पोषण
उनकी दादी लेडी रसल ने किया।
वो एक
काफी मजबूत इरादों वाली महिला थी। कुछ लोग उन्हें प्रगतिशील कहते हैं, कुछ सख्त विक्टोरियन। बचपन काफी अकेला बीता रसल का।
घर पर ही पढ़ाई हुई।
हाँ, ट्यूटर से।
शायद इसी अकेलेपन ने उन्हें गणित और तर्क की तरफ और खींचा होगा। एक ऐसी दुनिया जहां भावनाएं नहीं, नियम चलते हैं।
फिर वो कैम्ब्रिज गए, ट्रिनिटी कॉलेज।
जी, 1890 में। वहां उन्होंने गणित और दर्शन दोनों पढ़े और खूब चमके भी। वहां अपोस्टल्स नाम की एक गुप्त इंटेलेक्चुअल सोसाइटी थी, उसके सदस्य बने। व्हाइटहेड, मूर जैसे दोस्त वहीं मिले।
और यहीं से उनके अपने दार्शनिक सफर की शुरुआत हुई। हाँ, पहले तो वो उस समय के आदर्शवाद से प्रभावित हुए, पर जल्द ही मूर के साथ मिलकर उन्होंने उसे नकार दिया और तर्क और अनुभव पर आधारित एक नया रास्ता चुना।
और इसी रास्ते पे उन्हें वो मशहूर रसल का विरोधाभास मिला 1901 में।
हाँ बिल्कुल, रसल पैराडॉक्स, ये गणित और तर्क की दुनिया के लिए एक एक भूचाल जैसा था।
ये था क्या असल में, आसान शब्दों में समझा सकते हैं?
कोशिश करता हूँ। देखिए, उस समय गणित की नींव सेट थ्योरी पर बनाने की कोशिश चल रही थी। रसल ने दिखाया कि अगर हम एक खास तरह का सेट या समूह बनाने की कोशिश करें, जैसे उन सभी सेट का सेट जो खुद अपने सदस्य नहीं है, तो एक तार्किक विरोधाभास पैदा हो जाता है।
कैसे?
सवाल ये उठता है कि ये जो नया सेट हमने बनाया, क्या वो खुद का सदस्य है? अगर हाँ कहें तो परिभाषा के हिसाब से उसे खुद का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर ना कहें तो परिभाषा के हिसाब से उसे खुद का सदस्य होना चाहिए। दोनों तरफ से बात फंस जाती है।
अरे बाप रे, मतलब जिस तर्क पर गणित खड़ा करने की कोशिश थी उसी में गड़बड़ निकल आई।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका था। इसने दिखाया कि तर्क उतना सीधा और सुरक्षित नहीं है जितना समझा जा रहा था। इसी समस्या ने रसल और व्हाइटहेड को उकसाया कि वो गणित के लिए एक ज्यादा पक्का, ज्यादा कठोर तार्किक आधार तैयार करें।
और वही कोशिश बनी प्रिंसिपिया मैथमेटिका।
हाँ, लेकिन उससे पहले 1903 में एक और किताब आई थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें उन्होंने अपना लॉजिसिज्म का सिद्धांत रखा।
लॉजिसिज्म वो क्या था?
उनका आइडिया था कि गणित असल में तर्कशास्त्र का ही एक हिस्सा है या उसी से निकला है। मैथमेटिक्स इज रिड्यूसिबल टू लॉजिक, और रसल पैराडॉक्स का जिक्र भी इसी किताब में था।
फिर आया वो विशाल ग्रंथ प्रिंसिपिया मैथमेटिका व्हाइटहेड के साथ।
जी हाँ, 1910 से 1913 के बीच तीन भारी भरकम वॉल्यूम्स में। इसका मकसद था गणित के सारे सत्यों को कुछ बुनियादी तार्किक सिद्धांतों और नियमों से साबित कर देना, एक परफेक्ट लॉजिकल सिस्टम बनाना।
क्या वो सफल हुए इसमें?
ये एक मील का पत्थर है। इसने दिखाया कि गणित को कैसे तार्किक रूप दिया जा सकता है, और इसने बाद में कंप्यूटर साइंस के विकास में भी मदद की।
लेकिन बाद में 1930 के दशक में कर्ट गुडेल नाम के एक लॉजिशियन ने अपने अपूर्णता प्रमेय से ये साबित कर दिया कि रसल और व्हाइटहेड का जो सपना था, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो गणित के सारे सच साबित कर सके और जिसमें कोई विरोधाभास ना हो, वो पूरा नहीं हो सकता।
ओह, ये तो रसेल के लिए एक और झटका रहा होगा।
हाँ, ये लॉजिसिज्म प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा झटका था, पर प्रिंसिपिया का महत्व कम नहीं हुआ। उसने तर्कशास्त्र को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया।
तर्क और गणित से हटकर देखें तो पहला विश्व युद्ध उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था।
बहुत बड़ा? रसेल पक्के शांतिवादी थे। जब युद्ध छिड़ा तो उन्होंने जमकर उसका विरोध किया, लेख लिखे, भाषण दिए।
और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से निकाल दिया गया, और 1918 में एक राजद्रोहात्मक लेख के लिए उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई।
जेल भी गए?
हाँ। इसने उन्हें सिर्फ एक किताबी विचारक नहीं रहने दिया, वो एक पब्लिक फिगर बन गए जो सत्ता के खिलाफ बोलने का साहस रखता था।
और उनके छात्र विटगेंस्टीन के साथ उनके रिश्ते की भी बात हुई थी, वो कैसा था?
वो भी बड़ा दिलचस्प मोड़ था। विटगेंस्टीन बहुत ही प्रतिभाशाली थे। शुरू में तो उन्होंने रसेल के लॉजिकल एटॉमिज्म के विचार को ही आगे बढ़ाया।
लॉजिकल एटॉमिज्म, ये क्या था?
ये आइडिया कि दुनिया जो है वो अंतिम सरल परमाणु तथ्यों से बनी है, और हमारी भाषा, अगर हम उसका सही से विश्लेषण करें, तो वो इन तथ्यों की संरचना को दिखा सकती है, जैसे आईना दिखाता है। विटगेंस्टीन की पहली किताब ट्रैक्टेटस इसी आइडिया पर आधारित थी।
पर बाद में विटगेंस्टीन बदल गए।
हाँ, बाद में विटगेंस्टीन को लगा कि भाषा और दुनिया का रिश्ता इतना सीधा नहीं है। उन्होंने अपने ही गुरु रसेल के इस शुरुआती विचार को काफी हद तक खारिज कर दिया। ये रसेल के लिए बौद्धिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा।
रसेल ने आम पाठकों के लिए भी लिखा है ना, जैसे द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी।
जी बिल्कुल, 1912 में आई ये किताब। दर्शन में अगर किसी की शुरुआती दिलचस्पी है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी किताब है। सरल भाषा में ज्ञान क्या है, सच क्या है, दुनिया क्या है, ऐसे बड़े सवालों पर बात की है।
और इसमें वो ज्ञान परिचय द्वारा और ज्ञान वर्णन द्वारा वाली बात भी थी।
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण भेद है ये। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, यानी वो ज्ञान जो हमें सीधे अनुभव से मिलता है, जैसे किसी रंग को पहचानना, और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो हमें विवरणों से मिलता है, जैसे ये जानना कि दिल्ली भारत की राजधानी है, भले ही हम कभी दिल्ली गए ना हो।
और फिर उनकी वो किताब आई जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी।
हाँ, 1945 में बेस्ट सेलर बनी ये किताब, और 1950 में इसी के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इसकी खास बात ये थी कि इसने दार्शनिक विचारों को उनके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़कर देखा।
हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं।
हाँ, कुछ दार्शनिक मानते हैं कि इसमें कुछ विचारकों की व्याख्या थोड़ी सरल या पक्षपातपूर्ण है, लेकिन इसने दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। रसेल की लिखने की कला कमाल की थी, एकदम साफ और सधी हुई।
उनकी एक और बहुत प्रसिद्ध और शायद विवादास्पद रचना है, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन।
हाँ, 1927 का एक भाषण था ये, जो बाद में छपा। इसमें उन्होंने बहुत तर्कपूर्ण ढंग से बताया कि वो संगठित धर्म, खासकर ईसाई धर्म को क्यों नहीं मानते। ईश्वर के अस्तित्व के पारंपरिक तर्कों का खंडन किया और कहा कि धर्म अक्सर क्रूरता और अज्ञानता को बढ़ावा देता है।
ये तो काफी बोल्ड स्टैंड था उस समय।
बिल्कुल, ये किताब आज भी नास्तिकता और सेक्युलर ह्यूमनिज्म के समर्थकों के लिए एक तरह से बुनियादी टेक्स्ट मानी जाती है।
तो अगर हम उनके मुख्य दार्शनिक योगदानों को देखें तो क्या क्या आता है? पहला तो लॉजिक में उनका काम हो गया।
हाँ, गणितीय तर्क और गणित की नींव पर उनका काम। टाइप थ्योरी का विकास किया उन्होंने विरोधाभासों से बचने के लिए। इसने मॉडर्न लॉजिक और कंप्यूटर साइंस की नींव रखी। दूसरा, विश्लेषणात्मक दर्शन,
एनालिटिकल फिलॉसफी, मूर और विटगेंस्टीन के साथ।
जी, इसका जोर था भाषा के तार्किक विश्लेषण पर, विचारों में स्पष्टता लाने पर। उनका मानना था कि कई दार्शनिक पहेलियां असल में भाषा के उलझाओं से पैदा होती हैं।
मतलब भाषा को साफ करो तो विचार साफ हो जाएंगे,
कुछ ऐसा ही। इसी से जुड़ा था उनका विवरण का सिद्धांत, थियोरी ऑफ डिस्क्रिप्शंस, ये समझने के लिए कि फ्रांस का वर्तमान राजा गंजा है, जैसे वाक्य का मतलब कैसे बनता है जबकि फ्रांस का कोई राजा है ही नहीं। ये भाषा और यथार्थ के संबंध को समझने में एक बड़ी कामयाबी थी।
और लॉजिकल एटॉमिज्म भी था।
ज्ञान के सिद्धांत में उन्होंने सेंस डेटा और लॉजिकल कंस्ट्रक्शन पर जोर दिया।
ये तो हुए अकादमिक योगदान, लेकिन उनका सामाजिक चेहरा भी बहुत मजबूत था।
बहुत ज्यादा। वो वैज्ञानिक तर्कवाद के पैरोकार थे, व्यक्तिगत आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़े, शिक्षा में सुधार चाहते थे, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, और बाद के सालों में तो परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए उन्होंने बहुत काम किया।
हर तरह की तानाशाही के खिलाफ थे वो।
बिल्कुल, चाहे वो फासीवाद हो, कम्युनिज्म हो, या कोई धार्मिक कट्टरता। उनका मानना था कि तर्क और करुणा, रीजन एंड कंपैशन, यही दो चीजें हैं जो इंसानियत को बचा सकती हैं।
उनका असर कितना हुआ दुनिया पर?
असर तो जबरदस्त था। अकादमिक दुनिया में तो था ही, लॉजिक, फिलॉसफी, कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स सब पर। एनालिटिकल फिलॉसफी आज भी दर्शन की एक मुख्य धारा है।
और अकादमिक जगत के बाहर?
आम लोगों पर? शायद वहां असर और भी ज्यादा था। उनके लेखों, उनकी किताबों, उनके भाषणों ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया, उन्हें तर्क की ताकत दिखाई। वो सिर्फ कमरे में बैठ के लिखने वाले दार्शनिक नहीं थे, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले एक्टिविस्ट भी थे।
शांति आंदोलनों को प्रेरणा दी उन्होंने, वियतनाम युद्ध का विरोध किया।
हाँ, रसेल ट्रिब्यूनल बनाया युद्ध अपराधों की जांच के लिए, और उनकी वो रसेल की चायदानी वाली मिसाल तो आज भी इस्तेमाल होती है।
हाँ, वो क्या थी?
वो संशयवाद समझाने के लिए थी कि अगर मैं कहूँ कि सूरज और मंगल के बीच एक चायदानी चक्कर लगा रही है जो इतनी छोटी है कि दिखती नहीं, तो आप ये साबित नहीं कर सकते कि मैं गलत हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। सबूत देने का बोझ दावा करने वाले पर होता है।
सही बात है, बिना सबूत के कुछ भी क्यों माने।
बिल्कुल, आज के फेक न्यूज के जमाने में ये बात और भी जरूरी हो जाती है।
तो आज रसल कितने प्रासंगिक लगते हैं?
मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा। एक तरफ उनका लॉजिक का काम आज भी टेक्नोलॉजी की बुनियाद में है, दूसरी तरफ तर्क, सबूत, खुली बहस, बौद्धिक ईमानदारी पर उनका जो जोर था, वो आज की ध्रुवीकृत दुनिया में बहुत जरूरी है।
धर्म, राजनीति, नैतिकता पर उनके जो सवाल थे, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ, और उनके कुछ कोट्स तो कमाल के हैं, जैसे वो वाला।
हाँ, बताइए।
दुनिया के साथ पूरी समस्या ये है कि मूर्ख और कट्टरपंथी हमेशा खुद को लेकर इतने निश्चित होते हैं और समझदार लोग इतने संदेहों से भरे होते हैं।
वाह, ये तो आज भी बिल्कुल सच लगता है।
है ना, ये उनकी बौद्धिक विनम्रता दिखाता है कि असली ज्ञान संदेह से शुरू होता है, अंधविश्वास से नहीं।
और युद्ध पर भी उनका एक कठिन है। युद्ध ये तय नहीं करता कि कौन सही है, केवल ये कि कौन बचा है।
कितना सटीक, युद्ध सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है, सत्य का नहीं।
और एक और जो मुझे बहुत पसंद है, मैं कभी भी अपनी मान्यताओं के लिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ।
ये फॉलिबलिज्म का निचोड़ है, ये मानना कि हमसे गलती हो सकती है, ये कट्टरता का एकदम उल्टा है। अगर ये भावना हो तो शायद दुनिया में हिंसा कम हो जाए।
लेकिन रसल खुद भी तो विवादों से अछूते नहीं रहे, उनकी आलोचनाएं भी हुई।
हाँ बिल्कुल, कोई भी विचारक आलोचना से परे नहीं होता। दार्शनिक स्तर पर, जैसा हमने कहा, विटकिंस्टीन ने उनके लॉजिकल एटॉमिज्म को नकारा, गोडेल ने उनकी प्रिंसिपिया की सीमाओं को दिखाया, उनके ज्ञान के सिद्धांत की भी आलोचना हुई।
और उनके निजी जीवन को लेकर भी विवाद थे।
थे, उनके कई विवाह हुए, प्रेम संबंध रहे, वो फ्री लव और सेक्स एजुकेशन की वकालत करते थे जो उस जमाने में बहुत
रेडिकल माना जाता था।
इसी वजह से न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में उन्हें पढ़ाने नहीं दिया गया था, अनैतिक कहकर।
ओ, ये तो अजीब बात है।
हाँ, उनकी नास्तिकता भी कई लोगों को चुभती थी।
और राजनीतिक विचारों में भी कुछ ऐसी बातें थी जिनपे सवाल उठे।
हाँ, उनके विचार समय के साथ बदले भी। जैसे एक समय था 1940 के दशक के अंत में, जब उन्होंने बहुत ही विवादास्पद रूप से ये कहा था कि अमेरिका को सोवियत यूनियन पर परमाणु हमला कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो अपना बम बना लें।
क्या, एक शांतिवादी होकर?
हाँ, ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। हालांकि उन्होंने ये विचार बहुत जल्दी छोड़ दिया और फिर पूरी जिंदगी परमाणु निस्त्रीकरण के लिए काम करते रहे। पर यह दिखाता है कि उनके विचार भी हमेशा एक से नहीं रहे, उनमें भी उतार चढ़ाव आए।
उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी सुनने में आते हैं, वो प्लेन क्रैश वाली बात।
हाँ, 1948 में नॉर्वे में वो एक विमान दुर्घटना में बच गए थे, बर्फीले पानी में तैरकर किनारे पहुंचे थे, और मजाक में कहा था कि उनकी जान स्मोकिंग की वजह से बची, क्योंकि वो प्लेन के स्मोकिंग सेक्शन में थे, जो शायद बेहतर तैरा, या शायद ये सिर्फ एक मजाकिया टिप्पणी थी। 89 साल की उम्र में परमाणु विरोधी प्रदर्शन के लिए अर्ल की उपाधि थी, पर इस्तेमाल नहीं करते थे। अपनी पत्नी डोरा ब्लैक के साथ मिलकर एक स्कूल भी खोला था, बीकन हिल स्कूल। काफी प्रगतिशील स्कूल था वो।
आइंस्टीन के साथ मिलकर वो मशहूर घोषणा पत्र भी जारी किया था।
हाँ, रसल आइंस्टीन मैनिफेस्टो, परमाणु हथियारों के खिलाफ। वाकई 97 साल की उम्र तक वो सक्रिय रहे। एक असाधारण जीवन।
तो अंत में रसल हमें क्या सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या सबक मिलता है उनके जीवन से?
मुझे लगता है रसल हमें ये दिखाते हैं कि एक ही जीवन में गहरी बौद्धिक जिज्ञासा और समाज के लिए लड़ने का साहस, ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। वो हमें तर्क की ताकत दिखाते हैं, लेकिन साथ ही मानवीय करुणा और संदेह के महत्व पर भी जोर देते हैं।
वो जो तनाव है, जानने की इच्छा और ये एहसास कि हम शायद पूरी तरह कभी जान नहीं सकते, एक्शन लेने की जरूरत और एक्शन के परिणामों पर संदेह है।
बिल्कुल, यही तनाव उनके जीवन और काम में दिखता है, और शायद यही आज हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है कि सोचना, सवाल करना और अगर जरूरी हो तो अपनी राय बदलना, ये कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। तर्क को अगर प्यार और इंसानियत से जोड़ा जाए तो वो दुनिया को बेहतर बना सकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।